प्रोग्राम सच्चाई की राह में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है हमारे साथ आपका ये सफर ना सिर्फ बहुत अच्छा गुजरेगा बल्कि हमें बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। आइए एक खूबसूरत गीत के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज करें।
तुझसे मेरा राहें बदल, मेरी सोचें बदल दे, मर्जी पे अपनी चला, छूके अपनी आग से मुझे कुंदन दे बना।
अरे बाप, मैं जानता हूं कि जो भी मांगा या ना मांगा अता किया तूने। कैसी पुरफैज है खुदाया, जस्तजू तेरी, तेरे सिवा कोई बावफा हो सकता नहीं। तेरे फजल से ही कायम है आबरू मेरी।
भटकू कभी ना मैं, बदलू कभी भी, कामिल हो ईमान मेरा। मुश्किल भी आए तो घबराऊ ना मैं, तुझ में रहू खुश सदा। छूके अपनी आग से मुझे कुंदन
सामईन, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदाए पाक के बबरकत नाम से आपको सलाम करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है।
वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। अंजील मुकद्दस के मुताले के पिछले चंद सबकों में हमने मसीह की मौत और जी उठने की बाबत नबियों के नविश्ते उनकी नबूवत के ऐन मुताबिक पूरे होते हुए देखे। हमने देखा कि यसु ने सलीब पर अपना खून बहाया क्योंकि उसे कीलों से जड़कर सलीब पर लटकाया गया था, ताकि वो नस्ल आदम के गुनाह का कफारा अदा करे। हमने ये भी देखा कि उसकी लाश सलीब से उतारी गई और उसे कब्र में दफन किया गया, तो भी तीसरे रोज खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। कब्र से जी उठने के बाद 40 रोज तक यस्सू अपने शागिर्दों को दिखाई देता रहा, जो उसके जिंदा होने का जिंदा सबूत था। फिर अपने आखिरी सबक में हमने देखा कि यस्सू आसमान पर उठा लिया गया और उसके शागिर्द आसमान की तरफ टिकटिकी बांधे देखते रहे। क्या आपको याद है कि आसमान पर जाने से पहले यस्सू ने अपने शागिर्दों को क्या हुक्म दिया? उसका कलाम दोबारा सुनेंगे और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुदस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इस वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुवत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यस्सू जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। इस तरह यस्सू अपने शागिर्दों से जुदा होकर आसमान पर चढ़ गया जहां से वो आया था, और आलमे बाला पर खुदा कादर मुतलिक बाप के दाहिनी तरफ बैठा अदालत के रोज का मुंतजिर है, जब वो जमीन पर दोबारा आएगा और दुनिया का सच्चा और बेरिया इंसाफ करेगा। क्या आपने सुना कि यस्सू ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को क्या हुक्म दिया? उसने उनको हुक्म दिया कि जब तक उन्हें रूहुल कुदस का लिबास ना मिले वो यरूशलेम में ठहरे रहें। रूहुल कुदस का ये लिबास उन्हें आसमान से मिलना था। शायद आप में से कई लोग ऐसे हों जो परेशानी के आलम में सोचते हों कि ये रूहुल कुदस कौन है। रूहुल कुदस खुदाए पाक का पाक रूह है और मसीह पाक का भी यही रूह है। ये पाक रूह वो पाक हस्ती है जो खुदा बाप के साथ और खुदा बेटे यस्सू के साथ रहता है, मगर उसकी शख्सियत उन दोनों से जुदा है। इब्तदा में जब खुदा ने दुनिया बनाई तो ये पाक रूह खुदा के साथ मौजूद था। ये वही पाक रूह है जिसने पुराने वक्त में नबियों के जरिए खुदा का कलाम फैलाया और लिखवाया। रूहुल कुदस खुदा ताला का रूह है जो एक कंवारी पर नाजिल हुआ जिसका नाम मरियम था, और वो उसी रूहुल कुदस की कुदरत से हामला हुई और उससे एक मुकद्दस बेटा पैदा हुआ यानी यस्सू पाक। यही पाक रूह यस्सू में था। ये रूहुल कुदस मददगार भी है, यानी वो मददगार जिसके भेजने का वादा यस्सू ने अपने शागिर्दों के साथ किया था और यूं फरमाया था, और मैं अपने बाप से दरहास करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। यसु ने अपने शागिर्दों से मददगार भेजने का जो वादा किया, उसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग दूसरों को मनवाना चाहते हैं कि यसु किसी दूसरे नबी को भेजने के मुतालिक कह रहा था। लेकिन जिस मददगार के भेजने का वादा यसु ने किया, वो इंसानी वजूद का मालिक ना था, क्योंकि यसु ने साफ साफ कह दिया था कि वो रूह होगा जिसे कोई नहीं देख सकता, और ये रूह उसके शागिर्दों के अंदर हमेशा रहेगा। तो ये पाक रूह क्या है? ये पाक रूह खुदा की वो बख्शिश है जो वो मसीह पर ईमान लाने वालों को बख्शता है। ये पाक रूह उनको नई जिंदगी देता है, यानी नए सिरे से पैदा होने का फजल बख्शता है, उन्हें पाक करता है, कुवत देता है, उन्हें खुदा के फर्जंद बनाता है और उन्हें खुदा की पाक हजूरी में कायम रहने की सादत बख्शता है। आज हम देखेंगे कि पेंतिकोस्त के रोज खुदा ने यसु के शागिर्दों पर रूहुल कदस को कैसे उतारा। पेंतिकोस्त का दिन एक ईद का दिन था जिसे खुदा ने हजरत मूसा के जमाने में इसराइलियों के लिए मुकर्रर किया था। उसके मुतल्लक आप तौरात में देख सकते हैं, ये ईद गंदम की कटाई और खुशहाली की शुक्रगुजारी की ईद थी। तो भी ईद पेंतिकोस्त का मकसद उससे भी कहीं बढ़कर था। पेंतिकोस्त का दिन खुदा ने पहले से ही मुंतहिब कर रखा था ताकि वो मसीह पर ईमान लाने वालों पर रूहुल कुदस को नाजिल करे, और ये रूहुल कुदस उन ईमानदारों में सकूनत करे। जिस तरह इसराइलियों की ईद पेंतिकोस्त ईद फसा के 50 रोज बाद आती थी, इसी तरह खुदा ने मंसूबा बनाया कि रूहुल कुदस के नजूल की ईद पेंतिकोस्त मसीह के मर कर जी उठने के 50 रोज बाद आए। अब हम खुदा के कलाम की रोशनी में देखेंगे कि जब यस्सू अपने शागिर्दों से जुदा होकर आसमान पर चढ़ गया तो उसके बाद क्या वकुआ वाक्या हुआ। खुदा उनका कलाम बयान करता है, तब वो उस पहाड़ से जो जैतून कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सब्बत की मंजिल के फासले पर है, यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाहाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पस और तूमा और बरतलमाई और मत्ती और हलफई का बेटा याकूब और शमौन जेलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यस्सू की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहते थे। और जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की कुवत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर कोई यही समझता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं, और सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे कि देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पारथी और मादी और एलामी और मसोपोटामिया और यहूदिया और कपदुकिया और पेंतुस और आसिया और फ्रोगिया और पंफेलिया और मिसर और लबुआ के इलाके के रहने वाले हैं जो कुरीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मुरीद और कुरेती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मैं के नशे में है। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं। बस इसराइल का घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यस्सू को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावन भी कहा और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, आए भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। सामाइन, क्या आपने पतरस का पैगाम अच्छी तरह सुना? अपने पैगाम के आखिर में उसने यरूशलेम में लोगों की भीड़ से ऐलानिया कहा कि जैसे खुदा ने अपने नबियों की मार्फत मसीह के भेजने का वादा किया, उसी वादे के ऐन मुताबिक उसने यीशु मसीह को भेजा है। पतरस ने उनसे कहा कि जिस यीशु को खुदा ने आसमान से भेजा था उसी से तुम लोगों ने नफरत और दुश्मनी रखकर उसे हलाक किया। तुमने उसके हाथों और पांव में कील ठोंक कर उसे मसलूब किया था, मगर खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया और हम सब उसके जी उठने के गवाह हैं। खुदा ने उसी यीशु को अपनी दाहिनी तरफ बिठाया और पाकरू को नाजिल किया जिसका वादा उसने किया था, बस तौबा करो और रजू लाओ, नबियों के पैगाम का यकीन करो, यीशु पर ईमान लाओ जिसे खुदा ने दुनिया का नजात दहिंदा और सच्चा आदिल बनाकर भेजा। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। इस तरह पेंतिकोस्त के रोज कलीसिया यानी यीशु पर ईमान लाने वालों की जमात ने जन्म लिया। यीशु की कलीसिया ना तो किसी बिल्डिंग का नाम और ना ही किसी मजहब का नाम। कलीसिया या चर्च के लिए यूनानी जुबान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज एक्लीजिया है जिसका मतलब है बुलाए हुए, क्योंकि अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है। बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई कि खुदावन फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुड्ढे ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। आई इसराइलियो ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर मौजजों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। चुनाचे तुम आप ही जानते हो जब वो खुदा के मुकर्रा इंतजाम और इल्मे साबक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथों से उसे मसलूब करवा के मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मुझे जुम्बश ना हो, इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी जुबान शाद बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलम अरवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मकदिस के सड़ने की नौबत आने देगा। अय भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूं कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। पस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा, उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलम अरवा में छोड़ा गया ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। उसी यीशु को खुदा ने जिलाया जिसके हम गवाह हैं, पस खुदा के हाथ से सरबुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुदस लेकर जिसका वादा किया गया था उसने ये नाजल किया जो तुम देखते और सुनते हो, क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। बस इसराइल का घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावन भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यस्सु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे, इसलिए कि यह वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। समईन, क्या आपने पतरस का पैगाम अच्छी तरह सुना? अपने पैगाम के आखिर में उसने यरूशलेम में लोगों की भीड़ से एलानिया कहा कि जैसे खुदा ने अपने नबियों की मार्फत मसीह के भेजने का वादा किया था, उसी वादे के मुताबिक उसने यस्सु मसीह को भेजा है। पतरस ने उनसे कहा कि जिस यस्सु को खुदा ने आसमान से भेजा था, उसी से तुम लोगों ने नफरत और दुश्मनी रखकर उसे हलाक किया। तुमने उसके हाथों और पांव में कील ठोंक कर उसे मसलूब किया था, मगर खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया और हम सब उसके जी उठने के गवाह हैं। खुदा ने उसी यस्सु को अपनी दाहिनी तरफ बिठाया और पाक रूह को नाजिल किया जिसका उसने वादा किया था। बस तौबा करो और रजू लाओ, नबियों के पैगाम का यकीन करो, यस्सु पर ईमान लाओ जिसे खुदा ने दुनिया का नजात दहिंदा और सच्चा आदिल बनाकर भेजा। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। इस तरह पेंतिकोस्त के रोज कलीसिया यानी यस्सु पर ईमान लाने वालों की जमात ने जन्म लिया। यस्सु की कलीसिया ना तो किसी बिल्डिंग का नाम है और ना ही किसी मजहब का नाम। कलीसिया या चर्च के लिए यूनानी जुबान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज एक्लीसिया है जिसका मतलब है बुलाए हुए। जिस तरह आजकल दुनिया के अंदर सच्चे ईमानदार और झूठे ईमानदार मौजूद हैं, इसी तरह सच्ची कलीसिया भी है और झूठी कलीसिया भी। सच्ची कलीसिया उन लोगों पर मुश्तमिल है जो पेंतिकोस्त के दिन से ही आदम के घराने से निकलकर यस्सु के खानदान में दाखिल हो गए हैं, और यह सब यस्सु की कामिल और आखिरी कुर्बानी के सबब से हुआ, क्योंकि उस अजीम कुर्बानी के बाद किसी और कुर्बानी की जरूरत ना रही। हम जिस पेंतिकोस्त के वाके के बारे में आज सुनते हैं वो आज से तकरीबन 2000 साल पहले वाके हुआ था। शायद कोई समझे और कहे कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मैं तो उन लोगों में शामिल ही नहीं था जिन्होंने यस्सु को मसलूब किया, वो लोग तो यहूदी और रूमी थे, मेरा इससे मामूली सा भी ताल्लुक नहीं। ताहम खुदा का कलाम हमसे फरमाता है कि मसीह हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया। हमारी बदकारियां उसकी मौत बन गईं। हमारी खताएं और तकसीरें जब खुदा ने देखी तो उसने मजबूर होकर अपने इकलौते बेटे को आदमियों के हवाले किया कि वो उसके हाथों और पांव में कील ठोंक कर उसे मसलूब कर दें। आदमियों ने यस्सु को मसलूब किया, मगर खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा करके ईमानदारों के लिए नजात दहिंदा और बेईमानों के लिए सजा सुनाने वाला मुंसिफ बना दिया। अब खुदा का कलाम यूं फरमाता है, पस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। आज के इस कलाम पर अच्छी तरह गौर करना, क्योंकि आपकी आखिरी मंजिल का सारा दारोमदार इस कलाम को कबूल करने पर है। आज का प्रोग्राम और आज का कलाम सुनने का शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे, क्योंकि आप मुकद्दस पतरस रसूल की जुबान से सुनी हुई खुदा की बातों पर गौर करते हैं जो कुछ यूं है। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा और रूहुल कुदस इनाम में पाएगा।
वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। موجود ہے، وہ موجود ہے، تیرا جلال بہنے لگا ہے، تیرا جلال بہنے لگا ہے۔ تازہ ہوا یوں چلنے لگی ہے، تازہ ہوا یوں چلنے لگی ہے، رحم کی بارش برسنے لگی ہے، رحم کی بارش برسنے لگی ہے۔ وہ موجود ہے، 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 وہ موجود ہے۔ تازہ ہوا یوں چلنے لگی ہے، تازہ ہوا یوں چلنے لگی ہے۔
سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارے پتہ جات نوٹ فرما لیجئے، پی او باکس نمبر 311 لاہور پاکستان، یعنی پوسٹ باکس نمبر 311 لاہور پاکستان۔ فون نمبر بھی نوٹ کر لیجئے، 03-41-30-43-110، یعنی 03-41-30-43-110۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے life.walk@gmail.com، یعنی life.walk@gmail.com۔ اب اپنے میزبان کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔